परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का जन्म असमर्ण विचित्र परिस्थितियों में हुआ था। वे दीन स्थितियों में पले बड़े थे, संसारिक वस्तुओं के बिना। अपने विषय में उन्होंने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह भी नहीं। उन्हें कभी नहीं सम्मान पक्षपात सामान्यता प्राप्त हुई और ना ही पसंदीदा व्यवहार मिला धरती के राजनेताओं से और ना धार्मिक नेताओं का जो उनके उनके दिनों में थे। उनके उपदेश सरल थे और जबकि हजारों की भीड़ उनका अनुसरण करती थी, उनकी सेवा हमेशा एक एक कर लोगों को आशीषित करने में युक्त थी। उन्होंने असंख्य चमत्कार उनके बीच किए जिन्होंने उसे परमेश्वर से भेजा हुआ स्वीकृत किया। उन्होंने अपने शिष्यों को चमत्कार करने का अधिकार और शक्ति दी और बड़े काम जो उनसे हुए, परंतु उन्होंने कभी उन्हें पापों को क्षमा करने का विशेष अधिकार नहीं दिया। उनके शत्रु रोषपूर्ण हो गए जब उन्होंने उन्हें यह कहते हुए सुना, जा और फिर पाप ना कर और तेरे पाप क्षमा हुए। वह उच्च अधिकार उसी का था क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र है और क्योंकि वह उन पापों का भुगतान अपने प्रायश्चित से करेगा। उसकी मृत्यु पर शक्ति भी एक ईश्वरीय गुण था। जेरस एक आराधनालय का सरदार नबिंती की मेरे घर चल, क्योंकि उनके 12 विषयों की एकलौते बेटी थी और वह मरने पर थी। स्वामी ने उनकी विनती को सुना और जैसे वह जा रहे थे उसके नौकर ने जेरस को कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। घर में घुसते ही यीशु ने सबको बाहर जाने के लिए कहा और सीधे जाकर उसका हाथ लेकर उसे उठाकर कहा। एक और अवसर पर जब वह नैन के शहर जा रहे थे, वह एक अंतिम संस्कार के जुलूस में आए। एक विधवा अपने इकलौता पुत्र के मृत्यु पर रो रही थी। दया से भर उन्होंने अर्थ को छू कर कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। लोगों ने जब यह चमत्कार देखा, बड़ाई करके उन्होंने कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और भी ध्यान देने योग्य था क्योंकि उन्होंने युवा पुरुष को कानूनी तौर पर मृत घोषित कर दिया था और उसे दफनाने ले जा रहे थे। दो लोगों को जीवन में वापस लाने से वह प्रमाणित हुए क्योंकि पृथ्वी पर अधिकार और शक्ति का, जिसने विश्वासियों को चकित कर और निकटों को डर से भर दिया। तीसरा अवसर बहुत ही भव्य था। मर्था, मैरी और लाजरस भाई बहनों थे जिन्हें मसीह अक्सर मिलने जाते थे। जब उन्होंने लोगों से लाजरस की मृत्यु की सूचना दी तो उन्हें 4 दिन लगे परिवार तक पहुंचने में। मार्था को सहानुभूति देते हुए उन्होंने उससे सुरपुट किया, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि या भी मर जाए तो भी जाएगा जिएगा। जब उद्धारकर्ता ने शोक मनाने वालों को कब्र से पत्थर हटाने को कहा, मार्था ने डरते हुए उनसे कहा, प्रभु उसमें से तो ओब दुर्ग आती है क्योंकि उसे मेरे 4 दिन हो गए। तब यीशु ने उसे याद दिलाया, क्या मैंने तुझसे कहा था कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा? और ये कहा, उसने बड़े शब्द से पुकारा कि लाजरस निकल आ, और वह जो मर गया था वह निकल आया और लाजरस के 4 दिन कब्र में रहने के बाद परमेश्वर के पुत्र के दुश्मनों को सामना करना पड़ा। अखंडीय सबूत का, इसे वह ना अनदेखा क्षीण बिगड़ सकते थे। बाद में जीवित मसीह में यरूशलेम में अपने प्रेरितों के साथ आखिरी फसा का पर्व मनाया, स्थापित किया प्रभोज के धर्मविधि और उन्हें एक आज्ञा दी, निष्पकट सेवा से एक दूसरे को प्रेम करो। उसके बाद अपने सबसे परम प्रदर्शन में मनुष्य जाति के और अपना प्रेम और पूरे मन की इच्छा से वह साहस से चले और निश्चित से सामना करने अपने सबसे दृढ़ता और परीक्षण की ओर। गेत्सेमनी के बगीचे में नीरा निकले में उसने सबसे तीव्र पीड़ा का कष्ट उठाया और रोए के जो से खून बहाकर अपने पिता के आगे पूरी तरह से समर्पण कर उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और हमारी बीमारियों को पीड़ा अपने ऊपर ले लिया ताकि हमारी सहायता हो। हम कर्जदार हैं उसके और हमारे स्वर्गीय पिता के, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसके बलिदान ने हर एक को आशीषित किया, आदम से मनुष्य जाति को पहले से आखिरी तक। एक बार गेत्सेमनी में उसकी पीड़ा खत्म हुई, उसने खुद को अपने निकंदों को दे दिया, अपनों से ही धोखा मिला, उन्हें जल्दी में दंडित दिया। एक ऐसी स्थिति कि दोनों की तरह से सुनिश्चित और अवैध थी, एक ऐसा परीक्षण जो कि दोनों तरह से चलाकी भरा और अधूरा था। उसी रात उसे परमेश्वर की निंदा के आरोप में दोषी ठहराया गया और मृत्यु की सजा दी गई। उसकी नफरत और बदले की प्यास में, क्योंकि उसने उनसे कहा कि वह परमेश्वर का पुत्र है, उसके दुश्मनों ने प्लाइट को उसे मृत्यु देने के लिए रचा और उसके अनंत में उन्होंने अपने से आरोप ईश्वर की निंदा पर हो। रोमियो द्वारा उसकी तरक्की तिरस्कार और भी क्रूर था। उनका मजाक उड़ाना और अपमान करना उसके आत्मिक राज्य का अवमानना, राजपेक्षक कोटों के ताज से उसके दर्द भरे कोटे और लंबी पीड़ा से उसको जनता से सोलू के चढ़ाना पर सब चेतावनी थी हर व्यक्ति के लिए जो अपने को उसका चेला कहता था। अपने कष्ट के हर क्षण में मुक्तिदाता में संसार को उसने हमेशा दूसरों को आशीषित करने की सोची। दयालुता और स्नेह से उसने विनती की, यमुना से उसकी माता मरियम का ख्याल रखने के लिए उसके स्वर्गीय पिता से, जहाँ उसके शिष्य उदासीनता निराशा और अस्थाई की पीड़ा का सामना कर रहे थे। हमारा उद्धारकर्ता अपने परमेश्वर की महिमा योजना के अन्य भाग में अपनी सेवकाई के अन्य रास्ते में आगे बढ़ रहा था। 3 दिन के थोड़े समय में उसने बिना थके हुए मुक्ति के आसिमय कार्य की को मुक्ति मृतक के बीच स्थापित किया था। उस दिन में परमेश्वर के सभी परिवार के लिए अत्यधिक आशा बन गई थी। उस भेंट के दौरान उसने अपने विश्वासी अनुयायियों को स्थापित किया ताकि वह मुक्ति आत्मभर हुए थे जो कि जीवन में महिमा की योजना को जान नहीं पाए थे या उन्होंने उसे नकारा था। अब उनके पास उदासता मुक्त होने का मौका है। उसका नाम आत्मिक संसार में पूरा हुआ था। वह अपने आत्मा के साथ अपने शरीर को एकाग्र करने के लिए पृथ्वी पर लौटा। यहाँ तक उसने अपने अधिकारकर्ता से मुक्ति के ऊपर शक्ति दिखाई, जिनका आत्मिक योगदान दिया। उसने जीवन को अपने पुनरुत्थान का प्रदर्शन से पहले जीवन में लिया था ताकि सिर्फ वे जीवन में लौटे जो कि चमत्कारिकता से बढ़ाया ताकि वह मृत्यु प्राप्त कर सके। मसीह पहला था जो पुनरुत्थान हुआ और कभी नहीं मरा। हमेशा के लिए एक संपूर्ण अनंत शरीर पर अधिकार करने के लिए अपने पुनरुत्थान अवस्था में वह मरियम के सामने प्रकट हुआ। उसने उसे तुरंत पहचान लिया और उसकी आराधना करने लगे। हमारा मुक्तिदाता हमारी कोमलता के साथ उसने उसे चेतावनी दी। उसके अन्य और महिमापूर्ण स्थिति को विचारने के लिए मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। उसने अपने अतिरिक्त साक्षी अपने आत्मा संसार की सेविकाई को जो सच्ची और पूर्ण थी प्रदान की, बाद में भाषा को सुनिश्चित की। उसने कहा, अपने परमेश्वर को तुम्हारे पास के पास लाऊं पर जाता हूं और अपने पिता के पास जाने के बाद अब वापस आया और उसने प्रेरितों के सामने प्रस्तुत किया। मैं प्रमाणित करता हूं कि मसीह का दोबारा आने वाले से बहुत अलग होगा। वह अपने शक्ति और महिमा के साथ आएंगे अपने विश्वासियों के साथ। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर शांति का राजकुमार बाद हुआ उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता जो जीवित के न्याय और मुक्ति पर न्याय मसीह के नाम पर। मैं कहता हूँ, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि परमेश्वर आएंगे और वो आएंगे अपनी महिमा और पूरे पावर के साथ, और वो कहेंगे वो राजाओं के राजा बन के आएंगे, शांति का राजकुमार बन के आएंगे, जो जीवितों को न्याय अमृत पर न्याय कर्मे मसीह के नाम में।
Until the end, and in the name of Jesus Christ, amen.
Amen. Amen.